أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے صاحب اعضاء کے سلسلے میں، یعنی جس انسان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کو پرسہ دیا جاتا ہے، اس کے کیا وظائف اور کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اب ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ دفن کرنے کی کیفیت کو بیان کریں گے کہ میت کو کس طریقے سے دفن کرنا چاہیے. یہاں پر چند مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جو ہے وہ اس طریقے سے دفن کر دینا چاہیے کہ اس کی بو جو ہے وہ فضا میں نہ پھیلے، اور درندے بھی جو ہے اس کی قبر کو نہ کھود سکیں اور اس کو باہر نہ نکال پائیں. اس طریقے سے اس کو دفن کر دینا چاہیے. یعنی ایک تو یہ کہ جب میت کو جو ہے وہ قبر کے اندر اتار دیا جائے تو اس کو اوپر سے مضبوط طریقے سے بند کر دیا جائے چاروں طرف سے، تاکہ اس کی جو ہے وہ بو نہ پھیل سکے. اس لیے کہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو بدبو ہوتی ہے مرنے کے بعد، بہت سخت اور شدید ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ دفن جو ہے وہ عام طور پر صرف انسان کو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوسرے جانور کھا لیتے ہیں. اس کے بھی ممکن ہے اگر وہ کہیں آبادی وغیرہ میں ہو تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے جو ہیں اس کے نقصانات ہیں، اور جتنی بری بدبو جو ہے انسان کے جسم میں آتی ہے، اتنی بری جو ہے وہ مرنے کے بعد کسی اور چیز میں نہیں آتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ بعض علمی دستاویز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 70 گنا زیادہ اس جو اس میں بدبو ہوتی ہے، یعنی جانوروں کے مقابل میں جو ہے وہ 70 گنا، یعنی جتنی ایک جانور میں مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے، اس سے کئی گنا بعد جو ہے جب انسان مر جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جو ہے اس کو اس طریقے سے مضبوط انسان کی قبر کو بنا دیا جائے کہ اس کی بدبو نہ پھیل سکے. یہاں پر جو ہے وہ مقام غور ہے، انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ابتدا ایک نجس پانی کے قطرے سے ہے، اور اس کی انتہا بھی نجاست پر اور اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اور مولا کائنات کے قول کے مطابق اس کی زندگی بھر جو ہے وہ بھی اس عالم میں رہتا ہے کہ نجاستوں کو اپنے ساتھ اٹھائے رہتا ہے. لہذا اس انسان کو جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور کس بات پر تکبر کرے جب اس کی ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ درمیان میں بھی نجاستوں کو اٹھائے رہتا ہے. ایک چیز دوسرے یہ کہ انسان کی قبر جو ہے وہ اتنی گہری کھودی جائے، یعنی ایسی اوپر سے معمولی سی نہ کھود دیا جائے کہ اور اس میں دفنا دیا جائے کہ کوئی درندہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے قبر کو کھودے اور مردے کو نکال لے. نہیں، بلکہ جو ہے وہ قبر اتنی گہری کھودنی چاہیے کہ کسی درندے کی رسائی جو ہے وہاں تک نہ ہو سکے. آگے مسائل میں بیان کیا جائے گا کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جو ہے وہ قبر میں داہنی کروٹ دے کر لیٹانا چاہیے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. دیکھیں، یہاں پر فرض کریں کہ قبلہ ایسے سامنے ہے، تو میت کو جو لٹایا جائے گا وہ اس طریقے سے لٹایا جائے گا، یعنی ادھر میت کے پیر ہوں گے اور ادھر میت کا سر ہوگا. ایسی صورت میں جو ہے یہاں مسئلے میں فرماتے ہیں فقہا اور مجتہدین کہ اس کو جو ہے وہ داہنی کروٹ دے کر لٹانی چاہیے. دیکھیں، قبلہ ادھر ہے، اس کا سر ادھر ہو گیا اور پیر ادھر ہو گئے، یعنی اگر اس کو سیدھا لٹا دیا جائے تو گویا یہ قبلے کی طرف نہیں ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کروٹ دے کر، داہنی کروٹ دے کر، جب اس کو داہنی کروٹ دے کر لٹائیں گے تو یہ جو ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. یعنی جو ہے مقصود یہ ہے کہ جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جائے تو اس کے بائیں پہلو کے نیچے تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے. اب چاہے وہاں جو ہے وہ थोड़ी सी मिट्टी जो है रख दी जाए ताकि ऊंचा हो जाए, या किसी और तरीके से, बहरहाल थोड़ा सा जो है वो दाहिने पहलू के नीचे कुछ रख देना चाहिए ताकि दाहिना पहलू ऊंचा हो जाए और इंसान जो है बाई करवट के दाहिनी करवट के बल हो जाए, यानी बाने बाएं पहलू के नीचे जो है वो थोड़ा सा ऊंचा कर देना चाहिए ताकि दाहिनी तरफ करवट ले ले और उसका चेहरा जो है वो क़िबले की तरफ हो जाए। आमतौर पर जो है वो देखा ही जाता है कि मैयत को कब्र में लिटाने के बाद सिर्फ उसके चेहरे को क़िबले की तरफ मोड़ दिया जाता है, यानी ये क़िबला है, इस तरीके से यहाँ मैयत लेटी है, पैर इधर है, सर इधर है, और मैयत को सीधा लिटाकर जो है उसके सर को सिर्फ क़िबले की तरफ मोड़ दिया जाता है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मैयत के जिस्म को भी थोड़ा सा जो है वो करवट की तरह उसको लिटाया जाए ताकि जो है वो क़िबले की रुख हो जाए, इसलिए कि क़िबला रुख होने में जो है वो चेहरा और सीना क़िबले की तरफ होना चाहिए। तीसरा मसला ये है कि अगर मैयत को ज़मीन में दफन करना मुमकिन ना हो, मिसाल के तौर पर जो है वो किसी का इंतकाल हो जाए और जगह ऐसी है कि जिसको खोदा नहीं जा सकता, कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही है कि जिसको खोद दिया जाए, हर जगह जो है वो पत्थर ही पत्थर है, पथरीली ज़मीन है और खोदना जो है वो नामुमकिन है, या मिसाल के तौर पर जो है वो कहीं किसी का इंतकाल हो जाता है और कोई भी ऐसा हथियार नहीं है कि जिसके ज़रिए से ज़मीन को खोदा जा सके, तो ऐसी सूरत में जो है मैयत को ज़मीन में दफन करने के बजाय किसी इमारत वगैरह में जो है उसको दफन किया जा सकता है। इमारत वगैरह क्या मतलब है, इमारत वगैरह का मतलब यहाँ पर यह है यानी मैयत ऐसे ही ज़मीन की सतह पर रखी रहेगी और उसके ऊपर जो है कब्र बना दी जाएगी, यानी बजाय इसके कि ज़मीन में कब्र खोद कर मैयत को उसके अंदर रखें, बजाय उसके जो है क्या करेंगे, चूंकि मजबूरी है यहाँ पर ज़मीन खोद नहीं सकते हैं, या तो ज़मीन सख्त है यानी पत्थर की ज़मीन है, मुकम्मल पत्थर है नहीं खोद पा रहे हैं, या जो है वो हथियार नहीं है, तो ऐसे मौके पर जो है वो ज़मीन ये मैयत जो है ज़मीन के ऊपर रहेगी और उसी के ऊपर जो है वो कब्र बना दी जाएगी, और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर मैयत को ताबूत में भी रख सकते हैं, अलबत्ता मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बदबू जो है वो ना फैलने पाए। चौथा मसला ये है कि अगर कोई कश्ती में मर जाता है, मिसाल के तौर पर लोग जो है वो कश्ती में सफ़र कर रहे हैं समंदर में और कश्ती में किसी का इंतकाल हो जाता है, या आजकल जो है वो पानी के जहाज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, अगर उसमें जो है वो किसी का इंतकाल हो जाता है, तो अगर कश्ती जो है वो पानी समंदर के बीच में है और कुछ दिन बाद जो है वो किनारे पर पहुंच जाएगी, चाहे इधर पहुंच जाए या उधर पहुंच जाए, एक किनारे पर पहुंच जाएगी, तो अगर जब तक कश्ती किनारे पर पहुंचे तब तक जो है वो जो मैयत मरी है उसके जिस्म के ख़राब होने का ख़तरा नहीं है और कश्ती में रखने में कोई मुश्किल भी नहीं है, यानी कश्ती में उसको रखा भी जा सकता है, किसी तरह ही कोई मुश्किल नहीं है, यानी जब तक जो है वो खुश्की पर पहुंचेंगे तब तक ना उसका बदन ख़राब होगा यानी ना बदन सड़ेगा और उसको कश्ती में रखने में भी किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर जो है वो सब्र करना चाहिए यहाँ तक कि खुश्की पर पहुँच जाएँ और खुश्की पर पहुँचने के बाद मैयत को दफन कर दें, लेकिन अगर जो है वो नहीं रुक सकते हैं, यानी अगर इतना सब्र करेंगे जब तक जो है वो खुश्की पर पहुँचें, यानी मालूम हुआ भी सफ़र जो है बहुत लंबा है, और अगर उस वक्त तक सब्र किया और रुके रहे तो इसमें से जो है वो मैयत में से बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में जो है वो उसको वहीं पर गुस्ल देकर जो है गुस्ल देना चाहिए, हनूत देना चाहिए, यानी काफूर फराहम करके जो है उसके पेशानी हाथों वगैरह पर जो सजदे के मकामात बयान किए थे हमने पहले भी उन पर लगाना चाहिए, और उसके बाद जो है उस पर नमाज पढ़ने के बाद मैयत की नमाज पढ़ने के बाद उसके पैरों में कोई भारी चीज़ बांध कर उसको पानी में डाल देना चाहिए, यानी पहले गुस्ल दें, हुनूत करें, नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद जो है उसके पैरों में कोई भारी चीज़ बांध कर उसको जो है वो पानी में डाल देना चाहिए, क्यों, इसलिए कि अगर कुछ नहीं बांधेंगे तो इंसान मरने के बाद जो है देखें ये भी जो है कमाल है, जब तक इंसान जो है ज़िंदा रहता है तब तक डूबता है, लेकिन जैसे मर जाता है तो डूबा हुआ ऊपर आ जाता है, लिहाजा जो है वो मरने के बाद चूंकि बदन ऊपर आ जाता है, इसलिए उसके पैरों में कोई भारी चीज़ बांध देनी चाहिए ताकि जो है वो पानी की गहराई में चला जा सके। और कोशिश ये करे जहाँ तक मुमकिन हो उसको ऐसी जगह पर डाले कि जहाँ पर जानवरों के खाने का खतरा कम हो, क्योंकि जब उसको दरिया में समंदर में डालेंगे तो बहुत मुमकिन है कि दरियाई जानवर समंदरी जानवर जो है जो उसको खा लें। लिहाजा जो है, और ये भी बहुत मुमकिन है कि इंसान जो है वो रोक भी ना पाए चूँकि कश्ती चली जाएगी, और ये तमाम बातें हैं। लेकिन बहरहाल इंसान अपनी एतबार से ही कोशिश करे कि ऐसी जगह पर उसको डाले कि जहाँ पर डाल दे ही फ़ौरन जो है उसको जानवर न खा जाए, बल्कि जितनी बेहतर से बेहतर जगह हो सके उतनी जगह पर उसको जो है वो पानी में डाल दिया जाए। इसके बाद जो है वो पांचवा मसला ये है कि अगर कोई इंसान कुएं के अंदर मर जाता है तो अगर उसको कुएं से निकाल सकते हैं तो कुएं से निकालने के बाद आम तरीके से जैसे किसी मैयत को गुस्ल कफन और दफन किया जाता है वो उसके साथ भी किया जाए, लेकिन अगर जो है वो उसको कुएं से निकालना मुमकिन ना हो, या तो कुआं बहुत गहरा है और उसको निकाल नहीं सकते हैं, या कोई और बात है जिसकी वजह से उसको कुएं से नहीं निकाला जा सकता है, तो ऐसी सूरत में उस कुएं को जो है वो बंद करके, यानी कुएं पर मिट्टी डाली जाए, कुएं को बंद कर दिया जाए और उसी कुएं को जो है वो उसकी कब्र बना दिया जाए उस इंसान की। और अगर जो है वो कुआं जो है खुद उस इंसान का नहीं है जो उसमें मर गया, अगर मर गया उसी में और उसी इंसान का कुआं है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसकी कब्र वहीं पर बन जाएगी। अगर वो कुआं उस इंसान का नहीं है तो उसकी कब्र तो वहीं पर बन जाएगी, लेकिन जिसका कुआं है उस इंसान को राजी करना पड़ेगा, चाहे पैसे देकर राजी करें कि भाई आपके कुएं में जो है फलां मर गए हैं, हमने जो है उनकी कब्र वहीं पर बना दी है, आप राजी हो जाइए, कीमत ले लीजिए किसी तरह से। बहरहाल जो कुएं का मालिक जो है उसको राजी कर लेना चाहिए। दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम हो जाता है, अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और दफन के बारे में दूसरी गुफ्तगू और दूसरे मसाइल आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।